This is an ABP Life podcast.
सबका साथ सबका विकास, यही नारा है बीजेपी का, भाजपा का। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने हमेशा ही खुद को अलग बताया है, ये कहकर कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हालांकि जमीनी सच्चाई कुछ अलग दिखाती है। 6 जुलाई 2022 यानी कि बुधवार को अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया, क्योंकि उनका कार्यकाल टेन्योर खत्म हो चुका है। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी से एक भी मुस्लिम सांसद या विधायक नहीं होगा। तो जब प्रतिनिधित्व ही नहीं है, जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, मुस्लिम नहीं है, तो फिर कैसे सबके साथ सबका विकास का नारा सही है? इसी पर चर्चा करेंगे आज इस एपिसोड में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आज यानी कि 7 जुलाई के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा या राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरी की 31 विधानसभाओं में से किसी एक में भी मुस्लिम विधायक नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर दोस्तों 4908 सीटें हैं। थोड़ा सा मैथ्स आपको समझनी पड़ेगी, मैं समझा दूंगी। तो टोटल सीट सोचिए 4908, लोकसभा की 543 सीटें 543 सीटें, राज्यसभा की 245 सीटें यानी कि 245 सीटें, और बाकी लेजिस्लेटिव बॉडीज की सीटें मिला लें तो आपका जो बाकी का आंकड़ा है यानी कि 4120 का आंकड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दिए। पत्रकार रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर, जिन पर अक्टूबर 2018 के मी टू मूवमेंट में कई महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे, उन्हें भी बीच में से ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। वो बीजेपी के थे, उनका कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो गया। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर आलम का कार्यकाल 4 जुलाई को ही समाप्त हो गया था, और इसके ठीक 3 दिन बाद राज्यसभा में सदन की डिप्यूटी लीडर और फिर माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो गया है, यानी कि आज उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। लोकसभा में बीजेपी के आखिरी मुस्लिम सांसद शाहनवाज हुसैन थे, जो 2009 के जनरल इलेक्शन में बिहार के भागलपुर से जीते थे। दोस्तों, भारत में मुसलमान पूरी आबादी का करीब 15.5% है। तो अब सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसमें भारत के करोड़ों मुसलमान चेहरों में से एक भी मुसलमान पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में क्यों नहीं है? इसका जवाब जानना आसान नहीं है, इसलिए हमें कुछ पैटर्न्स फॉलो करने होंगे। एक बात तो ये है कि कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने ये बताया है और ये चिंता जाहिर की है कि बीजेपी थोड़ा सांप्रदायिक एजेंडा पर खेलती है, इसीलिए देश के मुसलमान पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वोट पूरा एक तरफा पड़ जाए। ये जग जाहिर बात है कि भारत में इस समय मुसलमान बीजेपी कैंडिडेट्स को हराने के लिए वोट डाल रहे हैं, और बीजेपी को भी मैं आपको बता दूं कि खास फायदा नहीं हुआ मुसलमान कैंडिडेट्स फील्ड करने में, तो उन्होंने भी सोचा कि हटाओ, जब फायदा ही नहीं तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन का लिबास काहे को पहने। यूपी में चुनाव के दौरान हम लोग कई मुस्लिम बहुल इलाकों में गए तो लोगों ने यही कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि हमें आपके वोट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी तो हमें वोट कर ही रहे हैं। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि बीजेपी खुद बहुत चाव से प्रचार प्रसार नहीं करती अगर उस इलाके में मुस्लिम ज्यादा हैं। हालांकि ये थ्योरी रामपुर और आजमगढ़ में गलत साबित हुई। रामपुर में कुल 51% मुस्लिम आबादी है, 51% अ लिटिल मोर देन 50%। रामपुर, जिसे आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है, वहाँ घनश्याम लोधी 40,000 वोटों से जीत गए। आजमगढ़ में भी सपा के धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के दिनेश यादव निरहुआ ने हरा दिया। लेकिन दोस्तों, पता है हर आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट होता है, तो इस आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि वोटिंग के दिन कई चुनाव क्षेत्रों से और गली कूचों से खबरें आई कि पुलिस मुसलमानों को वोट डालने ही नहीं दे रही। खुद आजम खान और उनके बेटे ने ट्विटर पर वीडियो और तस्वीरें साझा करी जहां लोग कह रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि फेक वोटिंग कराई जा रही है, कई वोटिंग बूथ में ईवीएम मशीनें खराब पाई गई हैं। खबरें तो ये भी आई है कि सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने खासा उस दिन परेशान किया। आपको बताते चलूं कि आजमगढ़ में उस दिन वोटिंग परसेंटेज 49.43 था और रामपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में वोटिंग परसेंटेज था 41.39। बीजेपी ने भी दोनों क्षेत्रों में ओबीसी फैक्टर ध्यान में रखते हुए ओबीसी कैंडिडेट्स ही चुने। उसमें अगर वोट करने पर रोक की खबरें, ईवीएम खराब और पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने की खबरों को साथ लेकर देखा जाए तो शायद ये नहीं कहा जा सकता है कि अब मुस्लिम समाज भी धीरे धीरे बीजेपी का वोटर बन रहा है। अब आ जाते हैं एक और थ्योरी पर कि क्या मुसलमान सपा का मोह छोड़ रहा है। जी बाईपोल नतीजों से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मतलब रामपुर से लेकर के आजमगढ़ दोनों ही बीजेपी ने जीत लिए, मगर ये नतीजे संसद में पुख्ता दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास। मगर मोदी सरकार लोगों को हमेशा चौंकाती ही है, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन हो जिसमें एकनाथ शिंदे को हाल ही में मुख्यमंत्री बनाया हो, या फिर झारखंड में हेमंत सोरेन को रिझाना हो। जी हाँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का बीजेपी की तरफ झुकाव आजकल जग जाहिर है। बीजेपी की राष्ट्रपति नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू को सोरेन सरकार ने अपना समर्थन दिया है। तो सियासी रणनीति समझना अभी बहुत मुश्किल है। हमें ये भी याद रखना होगा कि ऐसे नाजुक माहौल में जहां एक तरफ नूपुर शर्मा के बयान की खाड़ी देशों ने निंदा की और बीजेपी को उन्हें पार्टी से तक हटाना पड़ गया, क्या ऐसे समय में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा पहने बीजेपी सही में मुस्लिम नेता नहीं रखेगी। बातें तो ऐसी भी हो रही हैं कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर मुख्तार अब्बास नकवी को बैठाया जा सकता है। तो भाई कहीं तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ये हो सकता है बीजेपी का अगला प्लान। और कहीं ना कहीं दोस्तों 2024 में बीजेपी को मुस्लिम वोट की जब जरूरत पड़ेगी तब के लिए शायद मोदी सरकार का भारत के मुसलमानों के लिए ये प्लान हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कम तो होगा ही, मगर शून्य पर होना एक बहुत निराशाजनक बात होगी, क्योंकि भारत पर कई देशों की और खास करके मुस्लिम देशों की नजरें गड़ी हुई हैं। बाहरी रिश्तों को संजोकर रखने वाले पीएम मोदी शायद अभी ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो इसीलिए देखना होगा कि अंत में लोग सरकार के किस फैसले से चौंकते हैं। फिलहाल मैं निकलती हूँ, आपसे अगले FII में मिलूंगी। आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI। मैं हूँ साहिबा खान और पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित ने। नमस्कार।
This is an ABP Life podcast.